www.humanity.ca, ये आई के साथ है, HUMANITI humanity.ca इनकी वेबसाइट है, उस पर आप जाए। इंटरनेशनली प्रोजेक्ट्स हैं, यमन में बहुत जरूरत है, गजा में वाकई बहुत जरूरत है, हकीकत में मरे पड़े हैं वहां के बच्चे भी और बड़े भी, किसी तरफ से कम्फर्ट नहीं है। प्लीज डोनेट टुडे। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सर।
थैंक यू। जल्द स्पॉन्सर्स विल कम बैक। स्टे ट्यून्ड प्लीज।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब, लाओ जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
अपनी कम्युनिटी का सब तो वड्डा, वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
सैच कुटियोर और नेशनल ज़कात फाउंडेशन पेश करते हैं जश्न चांद रात, GTA में पहली दफा चांद रात सूफी कॉन्सर्ट, जहां हम मनाएंगे चांद रात एक सूफियाना अंदाज के साथ। चांद रात की खुशियां डबल हो जाएंगी, डिजाइनर कपड़े, ज्वेलरी, जूते, चूड़ियां, फूड कोर्ट और बहुत कुछ, सब एक ही जगह, रेड रोज कन्वेंशन सेंटर मिसिसागा। स्पॉन्सरशिप और डिटेल्स के लिए अभी कॉल करें 416-520-1372। मत भूलिए जश्न चांद रात।
वेलकम बैक तमाम सामीन जो मैं सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद और हमारे साथ इस वक्त जो है वो स्टूडियो में खबरें नहीं सुना रही, अभी खबरें नहीं सुना रही, देखते हैं क्या सुनाने के लिए आई हैं। तो आइए उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
WS कैसे हो? पाकिस्तान हार गया फिर से।
मतलब जख्म पर नमक छड़कना हो तो कोई आपसे सीख ले। खामोश हूं मैं सुबह से।
नहीं, मैंने कहा तुम इतने खामोश हो तो तुमको आसान हुए है ना, तो इसलिए देखो तुम हंस पड़े हो, तो इसलिए मैंने सोचा
आखिरी रमजानों में ऐसा हाँ। नहीं करते हैं।
अच्छा अच्छा, दिल नहीं दुखाते
नहीं दुखाते, दिल से दुआ निकलती है फिर।
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आज तो मेरे बेटे का भी बहुत खराब मूड था, मैंने आज उसको कहा, मैंने कहा भाई उठो क्या कर रहे हो तुम, तो कहता है मम्मा आज मुझे बिल्कुल नहीं छेड़ना ऐसे। अच्छा जनाब, हमारे साथ आ गए हैं जनाब अदनान अलवी साहब, प्रेसिडेंट है लाइफ टाइम ग्रुप के, और जबरदस्त आपके लिए जो है लेकर आते हैं बहुत सारे जबरदस्त इन्वेस्टमेंट के प्लान्स। वो कहते हैं गरीब शाजिया मलिक की तरह गरीब बनकर रहने की जरूरत नहीं है, अमीर बनकर रहो। तो अगर अमीर बनकर रहना है तो उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन उसके जो रिटर्न्स हैं बहुत जबरदस्त है। तो इसलिए हम आज बात करेंगे अदनान अलवी साहब से। जी अदनान अलवी साहब वेलकम। तो आप बताइए जरा अपने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपके इन्वेस्टमेंट्स के होते हैं, और जरा थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ताकि लोगों को जरा सिंपल लैंग्वेज में, ताकि उनको समझ में आए और वो आ जाएं आपके पास और फिर वो आपके साथ अमीर बन के रहेंगे।
थैंक यू शाजिया, अदनान अलवी की तरफ से और लाइफ टाइम ग्रुप की पूरी टीम की तरफ से आपको और तमाम लिसनर्स और व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं जो हूं वो ऑलवेज कुछ इन्वेस्टमेंट्स के आइडियाज लेकर आता हूं, बल्कि मैं ये क्लेम करता हूं कि मैं बहुत यूनिक आइडियाज लेकर आता हूं। देखिए मैं बताता हूं अपने लिसनर्स को, इन्वेस्टमेंट्स हमेशा यूजुअली दो तरह की होती हैं। एक इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जिससे आप जो है वो मंथली इनकम ले सकते हैं, और एक इन्वेस्टमेंट वो होती है जिससे आप कैपिटल गेन लेते हैं, वो एक सर्टेन टाइम के बाद होती है। तो दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट्स ये होती हैं, और हमको ये चाहिए कि हम बैलेंस करें और इन दोनों व्हीकल्स में हम इन्वेस्ट करें। ऐसी जगह भी इन्वेस्ट करें जहां से हमको रेगुलर इनकम आती रहे, और ऐसी जगह भी करें जहां पे एक सर्टेन टाइम के बाद हमको एक ग्रोथ वहां से आए, जो कि यूजुअली एक बड़ा अमाउंट होता है हमको, क्योंकि हर एक को जो सबसे पहले अपनी चीज को स्ट्रांग करने की जरूरत है ना, वो होती है उसकी इनकम स्ट्रीम को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पास एक रेगुलर इनकम आ रही है जो कि आपके बजट से ज्यादा है, तो आप हमेशा खुश रहेंगे, परेशानी में नहीं रहेंगे। परेशानी में हमेशा वो लोग रहते हैं जिनकी इनकम उनके बजट से कम रहती है। تو ہر دفعہ جو ہے وہ بھاگ دوڑ میں ہی لگے رہتے ہیں اور پریشانیوں میں ہی رہتے ہیں. تو میرا جیسے میں نے کہا کہ میں تو آلویز کوشش کرتا ہوں کہ ایسے آئیڈیاز لے کر آؤں جو کہ یونیک ہوں, ریڈیو پہ بھی کوئی نہ لے کے آ رہا ہو یہاں پہ. تو میرے پاس, میں نے لاسٹ ویک بھی اس کو ڈسکس کیا تھا, میرے پاس شادیہ, میرے پاس ایک پلان ہے, میرے پاس کچھ ریئل اسٹیٹ کی پراپرٹیز ہیں جن کو ہم وہ 100% مارگیج کے اوپر دے رہے ہیں.
اچھا,
یعنی کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنا گھر بائی نہیں کیا ہے اور آپ گھر بائی کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, جو چیز آپ کو روکتی ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس اگر ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہے تو آج آپ کا وہ مسئلہ بھی ہم حل کر دیتے ہیں. آپ آئیے, آپ کو کسی ڈاؤن پیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے ساتھ کیا لے کے آنا ہے, صرف ایک کلوزنگ کاسٹ لے کے آنی ہے جو کہ یوزولی 10,000 سے 15,000 کے بیچ میں ہوتی ہے. یعنی کہ آپ 10,000 سے 15,000 ڈالر لے کے آئیے اور اپنے گھر کے مالک بن جائیے. ہمارے پاس کچھ سلیکٹڈ پراپرٹیز ہیں, یہ جی ٹی اے کے اندر ہیں, کچھ جی ٹی اے سے باہر ہیں, نائگرا ریجن میں ہیں, واٹرلو میں ہیں, کیمبرج میں ہیں, اور یہ اسٹارٹ اپ پراپرٹیز ہیں زیادہ تر. یعنی یہ سمجھ لیں کہ ان کی جو پرائس رینج ہے وہ ہے 5 سے 6 لاکھ کے بیچ میں. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو بینک سے مارگیج ملے گی, یہ ذہن میں رکھیے, کوئی سیکنڈ لینڈر انوالو نہیں ہے, ڈائریکٹ آپ کو اے لینڈر بینک سے مارگیج ملے گی 90% کی, اور 10% آپ کو جو سیلر ہے نا وہ مارگیج دے دے گا اور وہ بھی بینک ریٹ پہ ہی دے گا آپ کو. یعنی وہ نہیں ہے کوئی 8-10% کے اوپر دے رہا ہے. تو مان لیں کہ اگر آپ کو بینک سے 4% پہ آپ کو مارگیج ملی ہے تو ہمارا جو سیلر ہے وہ بھی آپ کو 4% کے اوپر باقی کا 10% بھی دے دے گا. تو اس طریقے سے آپ کی 100% کی مارگیج ہو جائے گی. آپ نے کیا لینا ہے اس کو, اگر آپ نے خود رہنا ہے تو مارگیج پے کرنی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے خالی اس کو کرائے پہ اٹھانا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ جہاں رہ رہے ہیں تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ جہاں رہ رہے ہیں آپ وہیں رہتے رہیں گے تو آپ یہ پراپرٹیز زیادہ تر ہمارے پاس جو ہیں وہ رینٹ پہ آلریڈی اٹھی ہوئی ہیں. یہ رینٹ پہ اٹھی ہوئی ہیں, آپ ان کو چاہیں تو رینٹ پہ کنٹینیو کر لیجئے. آپ کو موو ان کرنا ہے, آپ موو ان ہو سکتے ہیں, مگر اچھی بات یہ ہے کہ آپ پراپرٹی کے مالک بن سکتے ہیں بغیر پیسے ڈاؤن پیمنٹ ڈالے ہوئے.
یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے عدنان صاحب, کیونکہ یہ جو چیز ہے نا, لوگوں کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ جی ہم کو اب 20% ڈاؤن کرنا ہے, تو وہ 20% ڈاؤن سے کبھی جو ہے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کرائے پہ ہی رہتے رہیں گے یا بیسمنٹ میں ہی ہم رہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی بیسمنٹ میں گزر جاتی ہے, بچے جوان ہو جاتے ہیں, وہ ایک کمرے کا مکان جس میں کہ کبھی جو چھوٹے 3 بچے تھے, ماں باپ تھے, وہ ان کے لیے کافی تھا, اب جب جوان ہو گئے بچے, جیسے بیٹیاں ہیں لڑکے ہیں, ان کو ہر کسی کو اپنا روم چاہیے ہوتا ہے, تو اب وہ ایسے. تو اس طرح سے اگر 100% آپ کا جو ہے وہ اٹ از ٹیکن کیئر آف تو اچھی بات ہے. اور دوسری بات جو آپ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ ہمیشہ اتنے پیر آپ اپنے پھیلائیں جتنی آپ کی چادر ہے, ضروری نہیں ہے کہ $2 million کا گھر
ہے.
تو یہ جو 5 لاکھ کا گھر ہے یہ بالکل آپ کی ضرورت کے مطابق ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو اب بیسمنٹ میں رہنے کی ضرورت نہیں, آپ کی اپنی خود کی پراپرٹی آ جائے گی, اور اس میں یہ بھی رہے گا کہ اس کی پھر پرائز جو ہے وہ ویلیو بھی اپریشیٹ ہوئے گی.
بالکل بالکل شادی, اس میں آپ کو یہی پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آج کل ریئل اسٹیٹ لو ہوئی ہوئی ہے پرائسنگ, تو آپ بیسکلی کیا کر رہے ہیں کہ آپ اس کو بائے کر رہے ہیں لو پرائس میں, اور جب کل مارکیٹ چڑھے گی تو آپ کی پرائس بھی اوپر چلی جائے گی. تو سمجھیں کہ اگر جب آپ نیکسٹ پراپرٹی اپنی بائے کرنے جائیں گے تو یہاں سے ایک اچھے خاصی ایکویٹی جو ہے نا آپ کو مل سکتی ہے. تو یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے آپ کو. بار بار میں کہہ رہا ہوں کوئی پیسے ڈاؤن پیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, جو چیز آپ کو لے کے آنی ہے وہ کلوزنگ کاسٹ ہے. بٹ اس پلان میں انٹر ہونے کے لیے کچھ اس کی کنڈیشنز ہیں. وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ایک کپل ہونے چاہیے, یعنی یا تو ہسبینڈ وائف ہوں آپ, یا جیسے سم ٹائم دو برادر مل کے ایک پراپرٹی لے رہے ہیں, وہ کپل ہونا چاہیے, گڈ کریڈٹ ہونا چاہیے آپ کا, اور آپ کے پاس کلوزنگ کاسٹ کے پیسے ہونے چاہیے. شاید اس میں ایک بات اور بھی ایڈ کرتا چلوں کہ جو بہت سارے لسنر ہمارے پروگرام سن رہے ہیں جن کے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں, جابوں میں ہیں, مگر وہ پیرنٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہ بڑی زبردست اپرچونٹی ہے کہ وہ ینگ بچے ابھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی رہتے رہیں اور زیرو ڈاؤن کے اوپر یہ گھر بائے کر لیجئے, اس کو کرائے پہ اٹھا کے رکھیے, لو آپ نے بائے کر لیا ہے, کل انشاءاللہ جب مارکیٹ بڑھے گی تو یہی 5 لاکھ کا اگر آپ نے گھر لیا ہوگا یہی 6 لاکھ کا آپ کا ہو جائے گا, तो आपका 100,000 की इक्विटी जमा हो जाएगी और ये 100,000 का जो प्रॉफिट है ये लेने के लिए आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की होगी, 10 से 12-15 हजार वो जो आपने क्लोजिंग कॉस्ट पे लगाए हुए हैं पैसे, तो आपको अपनी पॉकेट से कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं होगी। मेरा नंबर आप शेयर करवा दीजिए जरा, एक दफा लिसनर्स वेट कर रहे हो,
खुद ही बोले क्योंकि वो आपका कहीं वेट कर रहे हैं।
अच्छा ठीक, मेरा नंबर है 416-301-0249, 416-301-0249। तो हम बात यही कर रहे हैं कि अगर आप अभी तक किराए के घर में रह रहे हैं और आपके पास डाउन पेमेंट आप जमा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आज के हालात में डाउन पेमेंट जमा करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, हाँ मगर आपके पास अगर क्लोजिंग कॉस्ट के लिए 10 से 15 हजार डॉलर हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको आपका घर में मूव इन करा सकता हूं या दिलवा सकता हूं बगैर किसी डाउन पेमेंट के 100% मॉर्गेज के ऊपर। ये 100% मॉर्गेज याद रखिए, और इसमें कोई सेकेंड प्राइवेट मॉर्गेज इन्वॉल्व नहीं है, पूरा आपका बैंक से मॉर्गेज होगी, और जो आपको थोड़ी बहुत जो सेलर जो है अगर आपको पैसे देगा वो भी बैंक रेट के ऊपर ही होंगे, वो कोई 9-10-12-15% के ऊपर नहीं है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अभी किराए के घरों में रह रहे हैं। मेरा नंबर है 416-301-0249, 416-301-0249।
बिल्कुल, और सबसे बड़ी अच्छी बात यह अदनान साहब केस में कोई गिमिक्स नहीं है, तो इसलिए आप प्लीज अदनान साहब को जरूर फोन कीजिए और उनसे सारी ये डिटेल्स आप लें और आप अपने घर में मूव करें। और जैसे अभी अदनान साहब ने कहा कि अगर आपका बच्चा जैसे 21-22 साल का इंजीनियरिंग अभी उसने की है, वो आपके साथ ही रह रहा है, तो वो घर ले लेगा, आई थिंक और 7-8 साल में वो शायद मूव करने का सोचेगा। उस वक्त तक अगर आपने किराए पे वो घर चढ़ाया हुआ है तो आपकी बहुत सारी जो है ऑलरेडी मॉर्गेज जो है वो तो पेड हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपको बर्डन भी नहीं आएगा, वो तो जो आप वहां से जनरेट कर रहे हैं वो बैंक को दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
और ये जो 7-8 साल आपने कहे हैं ना, आप समझेंगे 7-8 साल में प्राइस ऐसी डबल हो जाती है,
बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जी जी बिल्कुल, मेरे अपने एरिया में अदनान साहब एक घर जो था 3 लाख का लिया था, अब हमारी एक वहां पे थी मैक्सिकन एक फैमिली थी, और फिर जिस वक्त फाइनली वो लोग छोड़ के और नायगरा की तरफ मूव किए, वहां पे उन्होंने एक जो है वो टाउन हाउस लिया, ये तो उनका प्रॉपर जो है वो घर था, बंगलो था, और उन्होंने एक टाउन हाउस लिया, तो आप सोचें कि वो 3 लाख का घर लिया हुआ उनका 7 लाख का हो गया था। तो फिर वो जिस वक्त वहां पे मूव किए तो उनकी पूरी मॉर्गेज भी पे हो गई और नया उनको वो दूसरा घर भी मिल गया, और जो है वो सो
जीटीए में आपको पता होगा तकरीबन 8 साल में ना प्राइस डबल हो जाती है, समटाइम इससे भी जल्दी हो जाती है, बट जो रूल ऑफ थंब है ना वो यही है कि 8 साल में यूजुअली प्राइस डबल हो जाती है आपकी।
बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अदनान साहब को फोन कीजिए एट 416-301-0249, दैट इज
416-301-0249।
ठीक है जी, इनको कॉल करें और जबरदस्त ये जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका हिस्सा बने। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
बिल्कुल, तो ये हमारे साथ थे अदनान अलवी, कहते हैं जनाब अगर आपने वेल्दी रहना है तो आपने कांटेक्ट करना है,
बन के
गरीब, गरीबों की दुनिया भी नहीं है,
नहीं है
गरीब में दुनिया भी है, तो मतलब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह
7 मिलियन USD
जी, आजकल तो हालात ऐसे ही चल रहे हैं, लेकिन अल्लाह सबके लिए आसानी करे। और चले जनाब अब हम आपका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्योंकि बाहर अजीब ही कहते हैं अजब मौसम चल रहा है भैया, कभी गर्मी होती है कभी बर्फ, और पूरा हफ्ता कहीं ना कहीं तलारी दिखाई दे रही है, और मुझे दिख रहा है सामने कि ईद वाले दिन भी मौसम अच्छा नहीं है, बारिश वारिश कुछ फ्लरीज हो,
संडे
संडे
अच्छा
देखिएगा,
मतलब बस फिर ईद का पिलान तो हम खा उस पे जो है खुद ही बारिश पड़ गई।
मैं आपको पता कहूंगा जी मैं संडे आ जाता हूँ मंडे छुट्टी कर लूँ ना, वैसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बार चले खबरों की तरफ आपको लेके चलते हैं, और खबरों से पहले जो है वो म्यूजिक बजा देते हैं थोड़ी सी और फिर वापस आते हैं। हमारा नंबर 416-602-0178। वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 एमडीएल पर प्रोग्राम साजो आवाज, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद, और हमारे साथ शाजिया मलिक साहिबा। अब तक की ताजतरीन, बल्कि मुझे इसके बाद का क्या हुआ मुझे नहीं पता, لیکن اب تک کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ان کو ری برتھ کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے تھی نا, ابھی دوبارہ بھائی مسئلہ ان کا یہی ہے, ہر بار ان کو انٹری میوزک بجاؤ. حالانکہ ابھی عدنان علوی کا انٹرویو لے رہی تھی, نیوز پڑھ سکتی ہیں. نہیں بابا نہیں, انٹری میوزک نہیں چلے گا. جیسے بھائی کا ہوتا ہے نا, بھائی کا انٹری میوزک نہیں چلتا تو نہیں آتا. یہاں بھی شہزاد جی نہیں آتی, میوزک میں نے چلا دیا. شہزاد جی آ چکی ہیں, آئیے ان کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈبلیو ایس ادھر کا اپن بھائی ہے
بجی. اللہ آپ کو
اپن بھائی ہے
بجی. اگر آپ کے جیسے بھائی ہونے لگ گئے, آپ کے جیسے بھائی ہونے لگ گئے تو مجھے اسلام آباد شفٹ ہونا پڑے گا.
ابھی اپن کے ساتھ تھوڑا دھیان سے بولے.
بھائی دیکھا نہیں ہے ابھی,
دیکھا نا تمہارا بولتا بھائی.
دیکھیں روزی روزہ خراب ہو
جاؤ گے, اٹھاؤ جاؤ گے.
آپ خبریں سنائیں, میرا روزہ خراب ہو جائے.
ٹھیک ہے اچھا جی, کیونکہ عامر جو ہے آپ سوچ ہی سکتے ہیں, اب اس نے خود ہی کہہ دیا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کس پارٹی سے. ہم تو صرف افطار پارٹی سے ہیں بھائی. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی کوئک ٹرک لیوب. کیو ٹی ایل جو ہے ان کے پاس جائیں آپ, کیا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا ٹرک جو ہے بہت ہی اچھے سے رہے, اس کی یعنی کہ ٹرک کی ہیلتھ اچھی رہے, تو آپ ان کے پاس جائیں. اوتھینٹک آئلز ڈالتے ہیں اور منٹو سکنڈوں میں آپ کے ٹرک کو ٹھیک کر دیتے ہیں. اچھا کھانا کھانا جاتے ہیں فیصل چڈا صاحب کے پاس جائیں. ولیج ڈیز پہ دو ریسٹورینٹس ہیں, وسیز ساگا اور اوکویل میں, اور انجوائے کا مزہ لیں. اور عدنان علوی صاحب کے پاس آپ جائیے, لائف ٹائم گروپ میں پریزیڈنٹ ہیں اس کے, آپ کو بہت زبردست سروسز دیتے ہیں انویسٹمنٹس کی. تو آپ اگر اور 10-12 سال آپ کہتے ہیں کہ جی میں بالکل یہ پیسہ ادھر انویسٹ کر دوں اور پھر ذرا تھوڑی چین کا بنسی بچا لوں, تو پھر آپ ان کے ساتھ تھوڑا انویسٹ کر لیجئے اور پھر آپ کو بہت لمبے پیسے ملیں گے, جیسے کہ انہوں نے 8 سال میں ڈبل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اچھے کپڑے کہاں ملتے ہیں جی؟ اسپیئرز اینڈ مکے. آپ جائیں ان کے بریٹانیا روڈ کے اوپر جو نیا آ گیا ہے آؤٹ لیٹ, اس میں بہت اچھے اٹالین ول کے چیزیں ہیں, وہ آپ خرید سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں, آپ دیکھیں شرٹس ہیں, ٹراؤزرز ہیں, لانگ کوٹس ہیں, سویٹرز ہیں, کارڈیگنز ہیں, جیکٹس ہیں, بہت زبردست چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ہماری جو ہیں ڈاکٹر نازیہ رحمان, ڈینٹسٹری آن رج وے, نیا ڈینٹسٹ آفس کھولا ہے انہوں نے, آپ ان کے پاس جاؤ, آپ کو بہت سارے ان کی سروسز ملیں گے. اینڈ ہمارے سلطان بھائی برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز پہ ہوتے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں, بنڈل ڈیلز لیں, بہت زبردست آپ کو اچھی پرائز پہ آپ کے جو اپلائنسز ہیں وہ آپ کو ملے گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب, بڑی ہی آج انٹرسٹنگ خبر سے ہم شروع کر رہے ہیں. وہ انٹرسٹنگ خبر کیا ہے, یہ آپ کو پتا ہی ہے نا کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں یہ جو ہے بولتے کیسے ہیں, ہے نا؟ تو یہ جناب ٹاکنگ پوائنٹس ان کو بولا جاتا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے نا نوٹس, ایسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ان کے ٹیبل کے اوپر بہت ساری وہ پیلی جو ہے نا چیپیاں ایسے 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 کر کے لگی ہوتی ہیں, وہ ٹاکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں. یا کہ کبھی اس طرح ہمارے جو ایسے بنا لیتے ہیں اور اس کے اندر ایسے بلٹ پوائنٹس جیسے آپ کو نظر آئیں گے تو اس میں ٹاکنگ پوائنٹس بناتے ہیں. تو یہ ٹروڈو صاحب جو ہیں جی, ان کی جو فون کال پہلی ہوئی تھی ٹرمپ صاحب کے ساتھ, اس کے کچھ ٹاکنگ پوائنٹس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اور اس میں پتا چلا ہے کہ جی سب سے زیادہ تو ان کو بتایا گیا تھا کہ کینیڈا یو ایس میکسیکو کا اگریمنٹ جو ہے اس کے اوپر بات ہوئے گی. حالانکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ مارا لاگو جب گئے تھے تو اتنا پیار کچھ تو ٹروڈو صاحب کا ٹرمپ کے سامنے چلا نہیں تھا, لیکن ان کو کچھ ٹاکنگ پوائنٹس جو تھے وہ دیے گئے تھے. انہوں نے کہا جی کہ جب آپ ان کو فون کال کریں گے, جب انہوں نے پہلی بار نومبر 6 کو کیا تھا لاسٹ ایئر, تو انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے آپ نے اس کے اوپر CUSMA جو کینیڈا یو ایس اور میکسیکو کا یہ جو ٹریٹی ہے, یہ اس قسمہ جس کو بولتے ہیں اس کو اوپر آپ نے بات کرنا ہے, اور پوٹینشیل سیناریوز آپ کے کیا رہنے والے ہیں اس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے. زیشان ذرا دکھا دیں ٹروڈو صاحب کی اور ٹرمپ صاحب کی پکچر. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے اوپر جو ہے آپ کی بات رہے گی, لیکن اس کا سارے کا سارا اگریمنٹ جو ہے اس کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ بات آئے گی. انہوں نے سجیسٹ کیا کہ آپ جی ٹرمپ صاحب کو جو اب ٹاکنگ پوائنٹس ہیں ان کی ہم بات کریں, کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جی آپ نے سب سے پہلے وہاں پہ ٹرمپ صاحب کو ان کے ہسٹورک ون کے اوپر کانگریچولیٹ کرنا ہے, ان کو ان کی تعریف کرنی ہے فار دا امیزنگ کیمپین, اور ان کو بتانا ہے کہ یو آر لوکنگ فارورڈ ٹو ورک ود ہم آن ٹریڈ اینڈ اکنامک افیئرز. اس کے علاوہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ جی ہم پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پائپ لائنز, ٹرانسمیشن لائنز, اور ہم اپنے سپلائی چینز جو ہیں ان کو جو ہے وہ انکریز کرنا چاہتے ہیں, تاکہ دوسرے جو ہاسٹائل کنٹریز ہیں ان کے اوپر ہمارا ڈیپینڈنس نہ رہے. اور جو یو ایس کی اینول تھریٹ اسسمنٹ رپورٹ جو آئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ اس کے اندر जो है सेक्शन अबाउट इलिसिट ड्रग्स एंड फेंटेनॉल, जिसके के ऊपर बेसिकली लड़ाई हुई थी ट्रंप साहब की और जो है इनकी ट्रूडो साहब की, यानी ट्रूडो साहब की तरफ से तो नहीं, उन्होंने इल्जाम लगाए थे कि बहुत सारे ड्रग्स आते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज जो इनकी रिपोर्ट आई है उसमें कनाडा का नाम नहीं है, ज्यादा जिक्र नहीं है। उसके अंदर ये है कि जी मोस्ट ऑफ द ये जो फेंटेनॉल थ्रेट है यूएस को, कि ये मैक्सिको की तरफ से है। और ये जो है आज सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी के सामने जब पेश हुई, तुलसी गैबर्ट जो कि उनकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, तो उनसे भी पूछा गया कि भई आप बताओ इसके फेंटेनॉल के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता है कि मोस्टली तो मैक्सिको से आती है, लेकिन कनाडा के क्या नंबर्स हैं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अब आप सोचो जरा, ये डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है यूएस की और उनके पास नंबर ही नहीं है। यानी कि पहला दिन जब आप अपने सीट पे आए थे तो आपका काम नहीं था कि आप जो है अपने नेबर को, जिसको इतना तंग कर रहे हो टैरिफ्स पे टैरिफ्स उस पर लगा रहे हो, एटलीस्ट उसको के बारे में तो आपने देखना था ना कि क्या हो रहा है। थ्री पार्टी लीडर्स जो है तीनों जनाब, आज फोर्थ डे ऑफ कैंपेन है और ऑन्टेरियो के अंदर ही है ये लोग। और ऑन्टेरियो में आपको पता है ना कि बहुत सारी सीटें हैं, 122 सीट्स है अप फॉर ग्रैब्स, और यहां पे जो भी पार्टी जीतेगी वो फॉर्म करेगी गवर्नमेंट। टीए पॉलियफ साहब जो है जीटीए में ही है कुछ दिनों से, और फिर उन्होंने जो है वो ट्रैवल किया हैमिल्टन और अब वो जा रहे हैं क्यूबेक की तरफ। जो है आज एटलांटिक कैनेडा में रुकने के बाद मार्क कार्नी जो है विंसर में थे, और जगमीत सिंह जो थे हैमिल्टन और फिर लंदन ऑन्टेरियो में थे। कार्नी साहब से पूछा गया उनके फाइनेंसिस के बारे में और ये जो ब्रुकलिन एसिड मैनेजमेंट है, तो उन्होंने कहा जी कि मेरा कोई भी स्टॉक वहां पे नहीं है और मेरे स्टॉक्स जो है अब ब्लाइंड, यानी मेरे एसेट्स जो है वो ब्लाइंड ट्रस्ट के अंदर है, तो मुझे आइडिया कुछ नहीं है कि वो कहां पे लगे हुए हैं। पीए पॉलियफ ने जाहिर है कि कार्नी को इसके ऊपर बहुत ज्यादा खींचा था और उन्होंने कहा था जी कि ये तो जो है इन्होंने निगोशिएट किया था $276 मिलियन का लोन फ्रॉम बैंक ऑफ चाइना फॉर ब्रुकफील्ड, तो ये जो थे जिस वक्त सर्व कर रहे थे ट्रूडो के इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर, तो ये तो बिल्कुल डायरेक्टली जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कार्नी साहब ने कहा जी के जो है मुझे अब एसेट्स के बारे में कुछ पता नहीं है। इसके साथ साथ आज उन्होंने अनाउंसमेंट किया है $2 बिलियन का स्ट्रेटेजिक जॉब्स फंड, ताकि कनाडा का जो ऑटो सप्लाई चेन है उसको किया जा सके। लेकिन ट्रंप साहब ने आज कहा है कि वो ऑटो सेक्टर के ऊपर भी और अब टैरिफ्स लगाएंगे। एनडीपी जो है उसने आज प्रॉमिसेस किए हैं कि वो जीएसटी हटाएंगे ऑन थिंग्स लाइक जो बच्चों के कपड़े हैं, हीटिंग बिल्स हैं, और जो ये जो प्री मेड ग्रोसरी जो मील्स हैं इसके ऊपर तकरीबन उनका 4.5 बिलियन पैसे लगेंगे। और वो कहते हैं लेकिन जो फैमिली ऑफ फोर है उसको $448 एनुअली बचेंगे। कार्नी साहब ने जो है ऑलरेडी कैंसिल कर दिया, आपको पता ही आते सारी कैपिटल गेन्स टैक्स हाइक, तो उसके बाद उन्होंने इंक्रीज की थी बेसिक पर्सनल इनकम अलाउंस टू 19,500 और इन्होंने डबल किया था कनाडा डिसेबिलिटी बेनिफिट। इसके अलावा उन्होंने इंक्रीज किया है गारंटीड इनकम सप्लीमेंट फॉर सीनियर्स, तो ये ऑल टुगेदर ये जो चीजें उन्होंने अनाउंस की हैं इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट का $22 बिलियन लगेगा। पॉलिया साहब ने जो प्लान्स दिए हैं आज वो सीनियर्स के लिए दिए हैं और उन्होंने कहा है कि वो अर्न कर सकते हैं मोर मनी, दैट इज जो जिनके के जो कमाएंगे $34,000 बिफोर पेइंग टैक्सेस। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी आरआरएसपी में वो अपना आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं टिल द एज ऑफ 73, इसको वो इंक्रीज करेंगे 71 ईयर से, और वो रख रहे हैं रिटायरमेंट एज 65 के ऊपर ही फॉर ओल्ड एज सिक्योरिटी गारंटीड इनकम एंड सीपीपी, तो ये तो ऑलरेडी लिबरल गवर्नमेंट ने दिया हुआ पैसे। लिबरल पार्टी जो है जी उसने जो फॉर्मर लीडरशिप कैंडिडेट हैं चंद्रा आर्या, जो उन्होंने रोक दिया था इनको अब लीडरशिप रेस से कि वो रन नहीं कर और भी रन नहीं भी कर सकते हैं एज लिबरल पार्टी कैंडिडेट, ये जो अभी इलेक्शंस हैं 2025 के, उसकी वजह है कि उन्होंने एक ट्रिप लिया था इंडिया को जिस वक्त इंडिया और कनाडा के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा खराब थे, और जो है उसकी वजह से अब ये जो नीपियन की जो राइडिंग है उससे ये एज लिबरल नहीं रन कर सकेंगे जहां से वो सर्व कर रहे हैं एज एमपी सिंस 2015। इनका डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो उस सूरत में आया है जिस वक्त जो है एक फॉरेन इंटरफेरेंस के बहुत सारे, आपको पता ही है वो रिपोर्ट जो कल हमने आपको बताई थी आई थी जिसके अंदर कहा गया है कि एलिजली जो है इंडिया इन्वॉल्व्ड है, तो इन्होंने जो अगस्त के अंदर लास्ट ईयर एक ट्रिप लिया था इंडिया को, उसमें ये मोदी जी से जाके मिले थे, और जो टॉप नेशनल सिक्योरिटी के लोग जिन्होंने मीडिया से बात की उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं किया टीम के साथ या कि ग्लोबल अफेयर्स कनाडा को भी नहीं बताया। और जो है इसमें हम ऑलरेडी भी गवर्नमेंट कह रहा है कि जी इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा جو ہے وہ ہمارے ڈیسیجنز میں اور چیزوں میں انٹرفیئر کرتا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آریہ صاحب نے کہا جی کہ میں نے کبھی بھی گورنمنٹ کی اس سے پہلے بھی جب میں ملتا تھا فارن لیڈرز اور ڈپلومیٹ سے تو کبھی کچھ پرمیشن نہیں لیتا تھا, تو ابھی اچانک سے ٹروڈو صاحب اور ان کے منسٹرز کو کائے کو یہ کنسرن جو ہے وہ آ گیا ہے. اصل میں مین وجہ مجھے کیوں لبرل پارٹی سے ہٹایا ہے, کیونکہ میں ایڈوکیٹ کرتا ہوں ہندو کینیڈینز کے لیے اور میں انتہائی خلاف ہوں خالصتان کے, تو اس لیے. اب یہ جو ان کی نیپین کی جو رائڈنگ ہے یہاں سے جناب کارنی صاحب جو ہے وہ رن کر رہے ہیں. ایک نیا لیجر پول آج پھر سے آیا ہے جس میں کہ ان سے پوچھا ہے کہ بھئی آپ کینیڈینز جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں, کافی ڈیوائیڈڈ ہے کی ایشوز کے اوپر کینیڈینز جو ہیں, اور 36% جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ جو بیسٹ ڈیل کرے گا ٹرمپ کے ساتھ وہ مین ایشو رہے گا. 33% کہتے ہیں کہ یہ جو چینج کرنی پڑے گی جو ڈائریکشن جو کینیڈا نے لے لی ہے اور امپروو کرنا پڑے گا لائف کو, ان کے لیے یہ سب سے بڑا مدعا تھا. 24% کے لیے مدعا سب سے بڑا تھا کہ کون اکانومی کو اسٹرینتھن کرے گا. یہ سروے 1599 لوگوں کا لیا گیا تھا بٹوین مارچ 21 ٹو 23. اس میں 59% لوگوں نے کہا کہ لبرلز کا زیادہ تر جو فوکس ہے وہ ٹرمپ اور ٹیرفز رہے گا. 15% کنزرویٹو جو ووٹر ہے اس نے کہا کہ بگیسٹ ایشو جو ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ 56% نے کہا کہ مین امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ یہ رہے گا جو ہم نے ابھی بتایا آپ کو کہ کینیڈا کی جو ڈائریکشن کیسے اب چینج ہوئی ہے اوور دا ایئرز اور امپروو کیسے کریں گے لائف کو. 15% جو لبرلز ہیں انہوں نے بھی جو ہے اس کو کی ایشو جو ہے وہ بتایا. 25% لبرلز اینڈ کنزرویٹو جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ کوشچن جو سب سے بڑا ہے وہ یہی ہے اکانومی کا ہے, وہ اچھی رہے گی تو چیزیں اچھی چلیں گی. 32% نے کہا کہ ٹرمپ ٹیرف اور یو ایس اگریشن جو ہیں وہ ٹاپ ایشوز رہے گے. 21% نے کہا انفلیشن, 10% نے کہا ہیلتھ کیئر اینڈ ہاؤسنگ افورڈیبلٹی. 1 in 2 جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ لبرلز ون کریں گے. 44% ڈیسائیڈڈ ووٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ووٹ کریں گے لبرل کے لیے. 38% ووٹ کریں گے کنزرویٹو کے لیے, اور 6% جو ہے این ڈی پی کے لیے, اور باقی جو ہے چھوٹے فریکشنز ہیں بلاک کیوبیک اور گرین پارٹی کے لیے. آپ کو بتائیے 38 پیلسٹینینز جو ہیں ان کو اور شہید کر دیا ہے غزہ کے اندر اسرائیل نے ان دا لاسٹ 24 آورز. اس کے علاوہ ایک باڈی جو ہے وہ بھی ملی ہے ربل کے اندر سے اکارڈنگ ٹو غزہ ہیلتھ منسٹری. یونائٹڈ نیشنز ہیومینیٹیرین ایجنسی جو ہے او سی ایچ اے اس نے کہا ہے کہ 140,000 پیلسٹینینز کو فورسبلی جو ہے غزہ سے نکالا جا رہا ہے آفٹر مارچ 18, جو کہ ظاہر ہے کہ ٹرمپ صاحب کا بھی پلان تھا. اور وہ کہتے ہیں جی کہ کانسٹنٹلی یہ اسٹرائک کر رہے ہیں نصرات ریفیوجی کیمپ کے اوپر, اور ایک کچن جس کے اوپر لوگ صبح سے لائن اپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے جن کو کھانا لینا تھا, ادھر بھی انہوں نے بومنگ کی ہے جس میں 5 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے علاوہ 3,250 ہاؤسنگ یونٹس جو کہ جنین کے ریفیوجی کیمپ میں تھے وہ اب انہوں نے اپنی بومنگ سے بالکل ان انہیبیٹیبل بنا دیے ہیں. 11 لوگوں کو ایک ٹینٹ میں جہاں پہ کے بےچارے ڈسپلیس ریفیوجیز رہ رہے تھے ان کو مارا ہے انہوں نے آج. اور جو یہ اب پلان ہے یہ کر رہے ہیں, پورا ایک پلان بنا رہی ہے اسرائیل کی گورنمنٹ کے کیسے غزہ کے پیلسٹینینز کو بولا جائے کہ والنٹیرلی غزہ کو خالی کر کے جاؤ ورنہ تمہارے اوپر اسی طرح سٹرائکس جاری رہے گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج سٹرائکس کیا ہے کویا کے ایریا میں بھی جو کہ سدرن سیریا کے اندر ہے, جس میں کہ لوگ آج بہت زیادہ حیران ہوئے. اسرائیل نے کہا جی کہ انہوں نے سیرین فورسز نے ہمارے اوپر فائر اوپن کیا تھا جس کا کہ ہم نے جواب دیا. اس پہ اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی سیریا میں اسرائیلی جو فورسز ہے وہ کیا کر رہے ہیں, تو اس کا کچھ خاص جواب انہوں نے نہیں دیا ہے. اچھا جناب, کل جب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اٹلانٹک کے اندر ایک آرٹیکل آیا ہے جس میں کہ یمن کے اٹیک کا پلان جو ہے بنایا ہے یو ایس آفیشلز نے, جس میں کہ جو ہے ان کے ڈیفنس سیکرٹری پیٹ ہیکسیتھ اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مائک والز ہیں, تو اس کے لیے اب آوازیں بہت زیادہ الاؤڈ ہو گئی ہیں کہ ان کو بولو یہ ریزائن کریں. وائٹ ہاؤس نے ڈینائی کیا کہ کوئی بھی کلاسیفائڈ انفارمیشن اس چیٹ کے اندر نہیں تھی. ٹرمپ کی جو اسپوکس وومن ہے کیرولن لیوٹ انہوں نے کہا جی کہ یہ آرٹیکل ہی بکواس ہے, ہوکس ہے بالکل, اس میں کچھ سچائی نہیں ہے. لیکن لا میکرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ بالکل اگر اس طرح کی کوئی کانورسیشن جو کہ آفیشیل گورنمنٹ کمیونیکیشن تھی یہ اگر باہر گئی ہے تو یہ تو اٹس اے اسکینڈل ان اٹ سیلف, اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جو کریڈیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ نیچے آ گیا. اور یہ لوگ تو जो है क्रिटिसाइज करते रहे हैं। हिलरी क्लिंटन ने जो अपने प्राइवेट ईमेल्स के लिए एक सर्वर को यूज किया था एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसके ऊपर आपने बड़ा एतराज किया था, तो अब आप कैसे करेंगे? दूसरों ने कहा कि योर एडमिनिस्ट्रेशन इज एक्सट्रीमली इनकॉम्पिटेंट एंड केयरलेस, जबकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला जो है ये बाहर जा रहा है, और इस तरह की सिक्योरिटी जब बाहर जाती है तो फिर लोग मरते हैं, और इस तरह के लोगों को बहुत ज्यादा खींचा गया है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है और उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे, तो अब इनके खिलाफ जो है ये भी लगाने चाहिए, यानी कि पीट हेगसेथ और माइक वॉल्स के अगेंस्ट भी। लेकिन ट्रंप साहब ने जी बड़े आज कैजुअल अंदाज में आज रिपोर्टर्स के साथ जब उन्होंने ये उनसे क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा जी कि अटलांटिक ये कोई मैगजीन है, ये तो जल्द ही आउट ऑफ बिजनेस होने वाला है और मुझे तो पता ही नहीं है इसके बारे में ये क्या है, और सो क्या लिखा है उसने उस आर्टिकल के अंदर, व्हाट इज इट। तो बड़ा उन्होंने इस तरह किया। इसी के साथ साथ जो पीट हेगसेथ है वो भी आज रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे थे, वो कहते हैं जी मुझे बिल्कुल पता चल रहा है कि ये कैसे आप कैरेक्टराइज इसको कर रहे हैं, और किसी ने भी ग्रुप में से कोई भी वॉर प्लान्स टेक्स्ट नहीं किए हैं। इसके होते हुए अब जो अटलांटिक ने जो बातें शायद कोई छुपाई भी थी उन्होंने वो पूरे की पूरी चीज जो है एज इज फिर से छाप दी है, तो भाईजान हूं काफी स्यापे इसके लिए पड़े हैं। डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, उन्होंने बड़ा एक्यूज किया है यूएस को कि ये बहुत ज्यादा अनएक्सेप्टेबल प्रेशर डाल रहे हैं ग्रीनलैंड के ऊपर अहेड ऑफ ये जो बड़ा प्रोवोकेटिव हाई लेवल विजिट टू आर्कटिक है जिसको के लीड कर रहे हैं यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और अपनी वाइफ उषा के साथ वो यहां पे ट्रेवल कर रहे हैं अलॉन्ग विद अदर सीनियर ऑफिशियल्स, ताकि ये इधर यूएस पिटूफिक स्पेस बेस जो है उसको विजिट करें ग्रीनलैंड के अंदर और ब्रीफिंग इसके अंदर दें ऑन आर्कटिक सिक्योरिटी इशू। तो जेडी वैंस के ऊपर काफी भड़की हुई थी मेटे फ्रेडरिक्सन और उन्होंने कहा है जी कि ये जो है ये हमें ये पूछ ही नहीं रही है हमसे कि ग्रीनलैंड को क्या चाहिए है। जिशान दिखा दें वही वाला पिक्चर जो अभी आप दिखा रहे थे, तो वो कह रहे हैं जी कि इनको पता ही नहीं है कि वो क्या हमसे पूछना चाह रहे हैं और क्या हमको बता रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब बिल्कुल सीरियस है, वो बिल्कुल ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं, और जो है ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि नेक्स्ट वीक में इनका जो है वो म्यूनिसिपल इलेक्शन आने वाला है, तो ये जेडी वैंस साहब का एग्जैक्टली उसी वक्त एक जो आना वो जो है बड़ा अजीब बात है, यानी कि विजिट पे आना वहां पे। साउथ कोरिया के अंदर जी 24 लोगों की डेथ हो गई है और 20 इंजर्ड हैं क्योंकि बहुत ही वाइल्ड फायर्स जो हैं वो यहां पे शुरू हो गए हैं। साउथ कोरिया का जो साउथ ईस्टर्न रीजन है वहां पे तक थाउजेंड्स ऑफ फायर फाइटर्स जो है वो फाइट कर रहे हैं और वो स्ट्रगल कर रहे हैं ये इन ब्लेजेस को कंट्रोल करने का, लेकिन जो है बहुत सारे ये जो फायर्स शुरू हुए थे वीकेंड के ऊपर ये अभी भी चल रहे हैं। इसके लिए 27,000 लोगों को इवैक्यूएट किया है और फायर फाइटर्स जो हैं कांस्टेंटली फाइट कर रहे हैं, अभी भी 5 एक्टिव वाइल्ड फायर्स है जिसपे काम कर रहे हैं और ये बहुत सारे नेबरहुड्स को बिल्कुल जला के राख कर दिया और एक एंशियंट टेम्पल था उसको भी जला दिया है इस आग ने, और जो एक फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर का पायलट की भी डेथ हुई है क्योंकि ये जो हेलीकॉप्टर था ये क्रैश कर गया था इन द माउंटेन्स इन यूई सियोंग, और इसके अलावा 4 लोगों का जो है रोड के ऊपर डेथ हुआ है क्योंकि वो भी आग से भाग रहे थे लेकिन उनका गाड़ी जो उसने आग पकड़ लिया। तो ये जो वाइल्ड फायर से ये शुरू हुए थे सेंचियोंग जो इनका काउंटी है वहां पे और भी बहुत सारे काउंटीज में ये फैल गया है। बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं मोहम्मद यूनुस साहब वो अब चाइना के हेनन जो प्रोविंस है वहां पे पहुंच गए हैं और कंट्री के जो एम्बेसडर टू चाइना थे मोहम्मद मजमुल इस्लाम और हेनियन के जो वाइस गवर्नर थे उन्होंने इनको रिसीव किया यहां पे एट कुई घाई बाओ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूनुस जो है वो 4 डे के विजिट पे यहां पे हैं जहां पे के वो होल्ड करेंगे बायलेटरल टॉक्स विद प्रेसिडेंट शी जिपिंग ऑन मार्च 28 और बहुत सारे डील्स भी साइन करेंगे। इसके अलावा वो स्पीच देंगे एट एशिया इन चेंजिंग वर्ल्ड टुवर्ड्स शेयर्ड फ्यूचर, ये कॉन्फ्रेंस एक हो रहा है वहां पे, और फिर उसके बाद एट बाओ फोरम जिसको के डेवोस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है उसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि दुनिया सारी से जो है डिसीजन मेकर्स आते हैं और डिफरेंट इश्यूज पे बात करते हैं। अब चूंकि यूएस ने वैसे भी सारा बोल दिया कि फॉरन ह्यूमैनिटेरियन एड को हम फ्रीज कर रहे हैं, तो इनको जो रोहिंग्या के लिए जो रह रहे हैं इनके कॉक्स बाजार में जो आता था ये सारा एड, अब उसके लिए काफी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे और लग रहा है कि ये जो विजिट ये अभी चाइना का जो कर रहे हैं वो इसी सिलसिले में कर रहे हैं कि शायद चाइना का अब इसके ऊपर जो है इनको थोड़ा हेल्प आ सकता है। आज जो है एक बहुत बड़ा यूएस का रिपोर्ट आया है जी ऑन रिलीजियस फ्रीडम्स, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि ये जो माइनॉरिटीज के साथ ट्रीटमेंट है इंडिया और पाकिस्तान में, ये बहुत डिटेरियोरेट कर रहा है, और उन्होंने रिकमेंड किया है कि ये जितने इन कंट्रीज के वो ऑफिशियल्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर आप सैंक्शंस लगाओ। गवर्नमेंट एजेंसीज एंड रॉ जो है उसका अलेज्ड उन्होंने अभी इंडियन जाहिर है इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज और रॉ का भी उन्होंने बोला है कि बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट है इन प्लॉट्स टू असैसिनेट सिक्स सेपरेटिस्ट। ये एक बायपार्टिजन यूएस गवर्नमेंट एडवाइजरी कमेटी है जो कि मॉनिटर करती है रिलीजियस फ्रीडम्स को बाहर, और फिर वो पॉलिसी रिकमेंडेशंस बनाती है। इसका नाम है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स। इसने अपनी 2024 रिलीजियस फ्रीडम्स की रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में कंडीशन कॉन्स्टेंटली डिटेरियोरेट कर रही है, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज स्पेशली क्रिश्चियंस, हिंदू, शिया, मुस्लिम्स एंड अहमदीज जो है उनको बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन जो है अंडर पाकिस्तान ब्लास्फेमी लॉ फेस करना पड़ता है। रिलीजियस पोलिटिकल क्लाइमेट बहुत खराब है, इनटॉलरेबल है, वायलेंस बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान में, तो इन लोगों के जो इसमें इन्वॉल्व हैं जो सब ये खराब कर रहे हैं चीजें, उनके एसेट्स को फ्रीज करने की जरूरत है और इनकी एंट्री को रोका जाए और रीडेजिग्नेट किया जाए पाकिस्तान को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। इंडिया के बारे में उन्होंने कहा जी कि 2024 रिलीजियस फ्रीडम्स इंडिया के अंदर भी कॉन्स्टेंटली जो है वो डिटेरियोरेट हो रही है, इसलिए कि डिस्क्रिमिनेशन है और अटैक्स जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज पे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हिंदू नेशनलिस्ट जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी और इनकी जो बीजेपी है वो प्रोपोगेट करती है हेटफुल रेट्रिक और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है मुसलमानों और दूसरे रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में, खासतौर पे जो लास्ट ईयर का इलेक्शन हुआ था। और इन्होंने कहा, रिकमेंड किया है गवर्नमेंट को कि इंडिया को भी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का आप डेजिग्नेशन दें फॉर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशंस और सैंक्शंस लगाएं यादव पे, जिसने के जो है सारा प्लान किया था इसको जो है गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने का, और इसके अंदर इन्वॉल्व थी इंडिया की रॉ भी, तो उसको भी जो है उस पर भी सैंक्शंस लगाए जाए। तो जनाब ये सारी जो है खबरें आई हैं आज अमेरिका से। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बड़ी तारीफ की है, ये जो स्टाफ लेवल अग्रीमेंट अब हो गया है आईएमएफ के साथ, इसके अंडर अब पाकिस्तान को 1.3 बिलियन के डॉलर्स मिलेंगे, और उन्होंने कहा जी कि मैं पाकिस्तान का डेट खत्म करना चाहता हूं, पाकिस्तान इज ऑन द वे टू सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। आज एक कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि हमको अपना इकोनॉमी जो है न सिर्फ स्ट्रांग बल्कि स्टेबल बनाना है आने वाले दिनों के लिए, चैलेंजेस तो है लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंस किया कि पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा क्यों, बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ऑफ इट्स पीपल। उन्होंने कहा जी कि अपोनेंट्स जो के बोल रहे थे कि हमको एक मिनी बजट लाना पड़ेगा इस डील को सिक्योर करने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको वो नहीं करना पड़ा है और इसके अंदर ना ही कोई एडिशनल टैक्स मेजर्स लगाने पड़े हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि मैं बिल्कुल हार्डवर्क जो हार्डशिप जो लोगों ने फेस किया है मैं उसको एक्नॉलेज करता हूं, और उन्होंने बहुत सारा प्राइस हाइक जो है वो भी फेस किया है लेकिन अब हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाएंगे। उन्होंने कहा जी कि मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं सैलरीड पीपल का जो बहुत मेजर पोर्शन टैक्स में देते हैं, और न्यू डील जो है ये जो हुई आईएमएफ के साथ ये पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व 8.3 बिलियन को चला जाएगा और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आएगी। इसके अलावा उन्होंने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की कंट्रीब्यूशन भी इसमें है उसका बहुत तारीफ किया है, और चीफ मिनिस्टर्स जो है खासतौर पर जो उन्होंने जो इसमें हेल्प किया है टू सिक्योर दिस डील उसका भी शुक्रिया अदा किया। बलूच यकजहती कमेटी की जो लीडर हैं समीदीन बलूच, उन्होंने आज मूव किया है सिंध हाई कोर्ट को अगेंस्ट आर 30-day डिटेंशन। टू मेंबर बेंच जो है वो अब इनकी कल थर्सडे को इनकी पिटीशन सुनेगा। अकॉर्डिंग टू हर काउंसिल एज सुन एज ये जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट थे उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जी इनको रिलीज करें, पुलिस ने इनको फिर से री रिलीज कर दिया था और डिटेन किया था कोर्ट प्रेमिसेज में, जहां पे कि बहुत धक्का मुक्की हुई थी, इनको बचाने की कोशिश की गई थी लेकिन पुलिस ने इनको जो था वो नहीं छोड़ा था, और फिर इनको शिफ्ट किया था जेल में फॉर 30 days अंडर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि आपने कराची के अंदर जो है वायलेट किए रूल्स और आपने ट्रैफिक को प्रॉब्लम दिया और लोगों को बड़ी जहमत हुई जो ये कर रहे थे, मोर्चा निकाले हुए थे वहां पे। अकॉर्डिंग टू सिंध होम डिपार्टमेंट ये डिसीजन जो है ये आईजी सिंध की रिकमेंडेशन पे लिया गया है, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारा बहुत सारा यहां पे सिक्योरिटी कंसर्न्स आ गया है और उन्होंने अलेज किया था कि समी और अब्दुल वहाब बलोच और रजा अली और दूसरे जो थे उन्होंने रोड ब्लॉकेट्स और सिटिंस जो थे वो इंसाइट किए थे, जिसकी वजह से कराची में जो है लॉ एंड ऑर्डर का सिलसिला बना वो डिस्टरप्ट हुआ और इनका जो प्रेजेंस है पब्लिक प्लेसेस में वो बहुत ही पोटेंशियल थ्रेट है टू पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सिटी, तो इसलिए इनको जेल में रखना चाहिए। लोकल कोर्ट जो है जी उसने रिमांड मांगा है जर्नलिस्ट फरहान मलिक का टू एफआईए कस्टडी फॉर 5 डेज और इनको पकड़ा था कॉल सेंटर फ्रॉड केस में, इनको अरेस्ट किया था जो है इन केसेस में, लेकिन एक नया केस भी अब इनके ऊपर आ गया है और इसलिए इनको जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया है अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर्स। इनको जो है लास्ट वीक अरेस्ट किया गया था। मलिक जो है एक प्राइवेट न्यूज चैनल के लिए एज न्यूज डायरेक्टर काम करते थे और फिर उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी एक चलाया। इनको कस्टडी में लिया गया था ऑन चार्जेस ऑफ स्प्रेडिंग एंटी स्टेट कंटेंट। एफआईए ने कहा जी कि हमने एक कॉल सेंटर पे रेड किया था जहां के एम्प्लॉयज जो थे वो फॉरेनर्स का डाटा चोरी कर रहे थे और डिफ्रॉड उनको कर रहे थे, तो जो दो लोग हमने जिनको अरेस्ट किया उन्होंने बोला कि ये जो कॉल सेंटर है इसको ऑपरेट जो है मलिक के ऑर्डर पे किया जा रहा है। अभी एक जर्नलिस्ट जो है वो पता नहीं ये कैसे करेगा, लेकिन बहरहाल जी एफआईए तो आपको पता ही है ना, इंटेलिजेंस एजेंसियां तो जो है कुछ भी बना देती हैं प्रोग्राम। बहरहाल ये इनका एक इंटरव्यू आया था फरहान मलिक साहब का और उन्होंने कहा था जी कि पूरी की पूरी 24 करोड़ आवाम तो जो है पाकिस्तान छोड़ के नहीं जा सकती है, वो उनको इधर ही रहना है और यहीं पे काम करना है। इसके साथ साथ जनाब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है उसने ग्रांट किया है 2 डे फिजिकल रिमांड ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट वहीद मुराद टू एफआईए और इनको कस्टडी में लास्ट नाइट लिया गया था इनके रेजिडेंस से जब ये अपने मदर इन लॉ जो थे वो भी घर पे थे उस वक्त, तो इनको आज प्रेजेंट किया गया बिफोर मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह के कोर्ट में इस्लामाबाद में, जब एफआईए ने कहा कि ये झूठी खबरें जो है फैला रहे हैं और इन्होंने कोर्ट को बताया जी जब हियरिंग शुरू हुई कि मेरी मदर इन लॉ जो है कैंसर पेशेंट है और कैनेडा से यहां पे ट्रीटमेंट के लिए आई है और उनके जो डिफेंस काउंसल हैं हादी अली उन्होंने कहा कि जी मुझको एफआईआर का कॉपी चाहिए, मैं देखना चाहता हूं क्योंकि मुराद जो है उसको अनलॉफुल ट्रीटमेंट जो है वो पुलिस दे रही है, उसके घर में घुस गई विदाउट एनी वारंट और जो है असॉल्ट किया इनके मदर इन लॉ पे भी। दूसरे जो डिफेंस लॉयर है ईमान मजारी उन्होंने भी कोर्ट को पिटीशन डाला और उन्होंने कहा जी कि ऑलरेडी इनको जो है इलीगल डिटेंशन में रखा हुआ है। एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कोर्ट को बताया कि हां ये बात सच है कि इनको लास्ट नाइट ही कस्टडी में लिया गया था, यानी उन्होंने कन्फर्म किया जो उनके लॉयर हादी अली बोल रहे थे। इस्लामाबाद में के जो अम्बेसडर हैं टू बीजिंग उन्होंने कहा जी कि पाक चाइना जो है कॉन्स्टेंटली एंगेज है टॉक्स में टू एनहांस सिक्योरिटी मेजर्स फॉर चाइनीज नेशनल्स। आपको पता ही है कि एक चाइनीज डेलीगेशन जो है इस सिलसिले में आया भी था शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए जब 2 चाइनीज सिटीजन्स को जो है मार दिया गया था, देवर अमंग 3 जिनको के सुइसाइड ब्लास्ट में नियर कराची एयरपोर्ट इन नवम्बर लास्ट ईयर मारा गया था और बीएलए की जो मजीद ब्रिगेड थी उसने इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, तो अम्बेसडर साहब भी उसी के ऊपर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का यह नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो बिल्कुल पूरे से इसको पूरा कर रही है। एम्बेसडर खलील हाशमी ने आज ये सारी बातें रिपोर्टर्स को बताई एट साइड लाइन्स ऑफ बाओ फोरम इन हेनन प्रोविंस, जहां पे कि आपको पता ही है कि यूनुस साहब भी गए जैसे हमने आपको भी बताया। दोनों कंट्री उन्होंने कहा जी बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं फॉर इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना रहे हैं टू एंश्योर कि चाइनीज नेशनल जो है जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं वो सेव है, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि हम अपने चाइनीज फ्रेंड्स को हर चीज का बताते हैं और वर्क इन प्रोग्रेस है तो हम उनको अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट है हमारे मुल्क में जिसको के समझना बहुत जरूरी है, लेकिन हम केपेबल है कि हम रिजॉल्व कर सकते हैं काउंटर कॉम्बैट और डिफीट कर सकते हैं टेररिस्ट फोर्सेस को, तो ये आज बातें उन्होंने की। इंडिया जो है वो उसको आज आइडेंटिफाई किया गया है जनाब एज स्टेट एक्टर अलोंग चाइना और इनको कहा है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये दोनों कंट्रीज जो है ट्रांसनेशनल ग्रुप ऑफ सप्लाई प्रीकर्सर है फॉर ड्रग ट्रैफिकर्स, और ये जनाब एक एनुअल रिपोर्ट असेसमेंट थ्रेट रिपोर्ट आया है यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो लाया है 2025 में, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसको पब्लिश किया है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के ऑफिस ने और इसको रिलीज किया है अंडर तुलसी गैबर्ट, जो कि आपको पता ही है कि अभी लास्ट वीक ही इंडिया में विजिट करने गई थी और बड़ी लवी डवी उन्होंने बातें भी किए थे मोदी जी के साथ और ये जो है वो उन्होंने अपना जो पहला फॉरेन ट्रिप था उसमें वो उधर गई हुई थी। अब ये फॉर द फर्स्ट टाइम है कि इस तरह का जो है टर्मिनोलॉजी भी इंडिया के लिए यूज किया है और उसको सेम ब्रैकेट में डाला है जहां पे कि चाइना को डाला गया है टू सप्लाई प्रीकर्सर केमिकल्स जो कि ड्रग डीलर्स लेते हैं ओपियोइड फेंटेनॉल को बनाने के लिए। लास्ट ईयर इंडिया जो था इट वॉज वन ऑफ द मेनी कंट्रीज जिसके बारे में कहा गया था कि मैक्सिकन गैंग्स जो है इनसे ये जो है प्रीकर्सर केमिकल्स लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम है, ज्यादातर ये जो की सप्लायर है ये चाइना है। आज की जो ये रिपोर्ट अब आई है यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज की, इसके अंदर जो इंडिया है उसको कहा गया है कि नहीं जी, इधर से भी बेताशा दवा दब ये केमिकल्स आ रहे हैं और ये उसकी वजह से ये खतरनाक फेंटेनॉल जो है ये बन रही है। अब ये जो वर्ल्ड स्टेट एक्टर्स है जिन्होंने यूज किया, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट का कॉम्प्लिसिटी है, यानी कि मोदी जी का जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल कॉम्प्लिसिट है इसके अंदर, जो कि ये रिपोर्ट बताती है। इंडिया जो है इस वक्त बड़ा क्लोजली एंगेज है यूएस के साथ कि फ्री ट्रेड डील उनको चाहिए है ताकि उसके ऊपर जो है ये जो इंडियन इंपोर्ट्स के ऊपर ट्रैफिक टैरिफ्स ना लग जाए, जो कि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि 2 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। तो अब इस माहौल में और जो तुलसी गैबर्ट भी आई थी और अब ये रिपोर्ट आ गई है, तो अब इंडिया के लिए तो जनाब बड़े आगे हैं मसले। तो जो लोग इधर बैठ के बड़ा एतराज करते हैं ना जी पाकिस्तान के ऊपर, तो अब ये बैक टू बैक दो खबरें जो हैं आ गई हैं मोदी जी की गवर्नमेंट के लिए, तो जरा उनको भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये जरा देखें जनाब आपके अपने कंट्री में भी क्या हो रहा है। लोग दुनिया जो है ऐसी भी पागल नहीं है जैसे कि आप समझते हैं कि हम दुनिया को बेवकूफ सारी दुनिया जिंदगी बनाए रखेंगे। हम बोलेंगे जी पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, अफगानिस्तान से ड्रग्स आ रहा है, तो दुनिया इतनी भी अंधी नहीं है, उनको पता चल रहा है आप क्या कर रहे हैं। तो एक तो उन्होंने आपको कह दिया कि ट्रांसनेशनल ग्रुप्स जो है आपके ये इन्वॉल्व है इसके अंदर प्रीकर्सर केमिकल्स में, इसके अलावा आप जो है माइनॉरिटीज के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं और उन्होंने रिकमेंड कर दिया जी आज के इंडिया को डालो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट के अंदर है जी। तो ये तो पहले आप पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे ना, वो देखो जी वो किस लिस्ट के अंदर है, अभी आप भी इंशाल्लाह होगे उस लिस्ट के अंदर, नो प्रॉब्लम्स। कांग्रेस के जो एमपी हैं जयराम रमेश, उन्होंने आज एक प्रिविलेज नोटिस जो है वो लेकर आए हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के लिए, और उन्होंने बड़ा उनको एक्यूज किया है कि इन्होंने बड़े ही भद्दी जो है वो लैंग्वेज यूज किया है सोनिया गांधी के लिए। ये जो नोटिस इन्होंने भेजा है राज्यसभा के चेयरमैन को, और उन्होंने कहा जी कि ये इनके जो एलिगेशंस हैं अनफाउंडेड हैं, टू मलाइन हर रेप्यूटेशन। उन्होंने कहा जी कि ये ब्लेटेंटली फॉल्स और डेफिमेटरी ये इनके कमेंट्स हैं अमित शाह साहब के, और ये ब्रीच करता है उसके प्रिविलेजेस को। शाह साहब की जो स्पीच थी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2024 मार्च 25 को, तो उसमें उन्होंने जो है वो कहा था कि जी ये तो जो खानदान है ये तो इस यानी कि मुल्क में, उनका कहने का मतलब ये था कि ये तो बुराइयां जो है ये एक खानदान की हैं। तो ये जो कल का ये जो बात यानी कि 25 को कल जब बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कि ये जो पीएम रिलीफ फंड है ये आया तो था कांग्रेस के जमाने में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट हमारी गवर्नमेंट ने किया है और एक फैमिली इसको सारे को कंट्रोल कर रही थी और कोई लोग इनसे पूछते नहीं है कि ये सारे पैसे कहां जा रहे हैं। तो सोनिया ने असल में, गांधी जो है उन्होंने असल में कल नॉन फुलफिलमेंट ऑफ मैटरनिटी फंड जो था उसका एक मुद्दा उठाया था, जिसके ऊपर फिर जी अमित शाह साहब भड़क गए थे और उन्होंने फिर इनको इतनी बातें सुनाई थी। ठीक है जी, आपको पता ही आपने देखी होगी यामी गौतम और प्रतीक गांधी की अभी एक फिल्म आई थी धूमधाम, तो काफी मिक्स किस्म के उसके अंदर जो है वो रिस्पॉन्सेज आए थे और क्रिटिक्स ने कुछ दिए, ऑडियंस ने कुछ दिए, लेकिन आपको क्या पता है कि ओरिजिनली इसके अंदर कैटरीना कैफ और फवाद खान होने वाले थे। एक इंटरव्यू दिया है फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर ने और उन्होंने ये बात मानी है, और वो इनिशियली अपना बॉलीवुड का जो डेब्यू करना चाहते थे वो करना चाहते थे रात बाकी से, जिसके के अंदर कैटरीना और फवाद होते, और इस प्रोजेक्ट को बैक कर रहे थे करण जौहर, और इसने जाना था फ्लोर्स पे 2016 में, लेकिन पुलवामा का जब अटैक हुआ तो उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी पाकिस्तानी एक्टर जो है बॉलीवुड के फिल्म में काम नहीं करेगा। तो ये भी उस वक्त रिपोर्ट्स आए थे कि शायद रात बाकी में सिर्फ फवाद को रिप्लेस किया जाए और बाकी फिल्म उसी तरह चले, लेकिन ये फिल्म ही शेल्फ कर दी गई थी। तो एज अ रिजल्ट आदित्य धर ने कहा कि फिर मुझको अपना बॉलीवुड का डेब्यू जो है फिर उड़ी से करना पड़ा, जो इन्होंने बनाई थी उड़ी अटैक पे। इंडिया के जो हाईएस्ट पेड ओटीटी स्टार है उसको 125 करोड़ रुपीज दिए गए हैं फॉर अ सिंगल सीजन ऑफ एन ओटीटी جو ہے وہ سیریز. اور یہ جو فیس ہے یہ زیادہ ہے جو شاہ رخ خان یا کہ سلو بھائی لیتے ہیں اپنی ایک فلم کے لیے. ان 2021 اجے دیوگن کا جو آیا تھا او ٹی ٹی پہ جو یہ سیریز رودرا, اس کے لیے انہوں نے 125 crore rupees کیے تھے چارج فار 7 episode season, یعنی کہ 18 crore rupees پر ایپیسوڈ, وچ از دا ہائیسٹ ایور ان انڈین انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی جو ہسٹری ہے. اس میں شاہ رخ خان جو ہے 90 to 100 crore انہوں نے چارج کیا تھا رئیس اور زیرو کے لیے, اور اتنے ہی پیسے جو ہیں تقریباً سلو بھائی جو ہیں ہمارے سلمان خان بھی چارج کرتے ہیں. آج صبح اگر آپ نے دیکھا ہوئے گا سوشل میڈیا کافی پاگل ہوا ہوا تھا کہ جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ایشوریا رائے کی گاڑی کا جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, اس کی گاڑی کو ہٹ کیا ہے ایک لوکل بس نے فرام بیہائنڈ. اکارڈنگ ٹو میڈیا رپورٹس یہ جو تھا پھر اس میں روڈ کے اوپر بہت زیادہ کیاس آ گیا تھا, اور اس میں کہا گیا کہ ان کے جو باڈی گارڈز تھے وہ بھی گاڑی سے باہر آ گئے تھے, اور لیکن وہ گاڑی کے اندر جو ہے وہ نہیں تھی, لیکن کسی کوئی بھی سیریس انجریز جو ہیں گاڑی کو یا کسی کو بھی جو اس میں بیٹھے تھے لوگ اس کو نہیں آیا ہے. تو پھر یہ کہا گیا جی کہ ان کے جو باڈی گارڈز تھے وہ وہاں پہ اسپاٹ پہ ہی چھوڑ کے ایشوریا رائے کے وہ چلے گئے کچھ ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے. پولیس آفیسر لیکن جو جوہو کا ہے اس کے پاس بالکل ہی ڈفرنٹ اسٹوری ہے. وہ کہہ رہا جی کہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہوا تھا بالکل, ایک بس کا ڈرائیور جو تھا وہ کانسٹنٹلی اس کی گاڑی کو ہانک دیتا جا رہا تھا, اور جو ہے وہ تو اس لیے ایشوریا رائے کے ڈرائیور نے گاڑی کو روکا اس سے باہر پوچھنے کے لیے کہ بھائی تمہارا کیا پرابلم ہے, کیونکہ آلریڈی کافی رش ہے روڈ پہ تو ہم ایک ہی لین میں جا سکتے ہیں, تو تم اتنا ہانک کیوں کر رہے ہیں. تو کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا, کوئی لڑائی نہیں ہوئی کچھ. تو یہ دیکھیں ذرا سوشل میڈیا پہ چیزیں کیسے بھڑکا دی جاتی ہیں. اور جناب علی ظفر صاحب جو ہیں وہ پروڈیوس کریں گے اور فیچر بھی اس میں کریں گے خود سے. پی ایس ایل 10 کا جو اینتھم بن رہا ہے اس کے اندر آج یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ پی ایس ایل نے بھی کیا ہے, اور ظفر نے بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ ڈالا ہے. انہوں نے کہا جی فرسٹ پیس آف ہیش ٹیگ HBL PSL X Anthem پزلز ہیئر, اور اس میں جو ہے انہوں نے ایک پکچر بھی ڈالا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ علی ظفر جو ہے اس نے کافی سارے پی ایس ایل کے اینتھمز جو ہیں وہ پروڈیوس کیے ہیں, اور اس کے اندر بھی ہوتے ہیں بڑے انفرگیٹیبل میوزیکل رائڈز انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو دیے ہیں. 2016 میں بھی انہوں نے کمپوز بھی کیا تھا اور پرفارم بھی کیا تھا اپنے گانے اب کھیل کے دکھا, اس کے بعد اب کھیل جمے گا 2017 میں انہوں نے کیا تھا, پھر دل سے جان لگا دے 2018 میں کیا تھا, اور اب پھر سے یہ جو ہے بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بڑا ہی فریش وائب جو ہے گانے کو دیتے ہیں. پی ایس ایل کا جو ایگزیبیشن میچ ہے جو کہ پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے پاس ہونے اس کے ساتھ ہونے والا تھا وہ اب جیپٹی میں ہے, کیونکہ پی سی بی نے انالیسز کیا ہے اور باب نیاز سٹیڈیم کا, اور انہوں نے کہا ہے کہ آؤٹ فیلڈ پچ ڈریسنگ رومز کامنٹری اور میڈیا باکسز سارے انسیٹسفیکٹری ہے, اور بہت سیویئر یہاں پہ فیسلٹیز کا جو ہے وہ کمی ہے. جاوید آفریدی جو کہ زلمی کے اونر ہیں وہ بہت دنوں سے ایڈوکیٹ کر رہے تھے کہ پی ایس ایل کے کچھ میچز جو ہے پشاور میں بھی ہونے چاہیے, اور انہوں نے ارج کیا تھا پی سی بی چیئرمین محسن نقوی کو کہ وہ اس کو کنسیڈر کرے ایز ون آف دا پی ایس ایل 10 وینیوز. لیکن جو وہاں پہ جب جا کے پی سی بی کی ٹیم نے دیکھا تو وہ فیسلٹیز بہت ہی خراب تھے. ایونٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے فرائیڈے کو 11 April سے, اور اس میں پہلا کلیش جو ہے اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور کلندرز کے بیچ میں ہوئے گا ایٹ راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم. 6 team یہ جو ٹورنامنٹ ہے اس کے اندر 34 matches رہیں گے فرام 11 to May 18, اور جو ایلیمینیٹرز اور فائنل جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم میں ہوئے گا. ان لیٹسٹ آئی سی سی مینز T20 پلیئر رینکنگز جو ہیں اس کے اندر ہارس روف جو ہے وہ جمپ کر گیا ہے 11 spots ٹو 15th وتھ 632 ریٹنگ پوائنٹس فور ابھی جو نیوزی لینڈ کے خلاف جو 2 matches ہو رہے تھے اس میں اس نے 3 for 27 لیا تھا اور 3 for 29. پیسر عباس آفریدی جو ہے اس کو بھی 8 places وہ اوپر آ گیا, ناؤ ہی سٹس ایٹ 36. بیٹنگ کے اندر آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ جو ہے وہ ابھی بھی نمبر 1 پہ ہے, اور T20 بیٹرز میں بابر اعظم اور محمد رضوان, حالانکہ ان کو ساؤتھ افریقہ نیوزی لینڈ کا یہ جو T20 سیریز تھا اس میں سنب ملا تھا, پھر بھی ابھی بھی وہ 9th اور 10th position پہ بیٹھے ہیں. اور جناب سب سے دکھ کا خبر پھر سے, کل جو ہے پاکستان ہار گیا, حالانکہ جو کوچ ہیں अजहर उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं हम तो बिल्कुल जीतेंगे, दूसरा तो 3-2 से हम फिनिश करेंगे। बालाजी न्यूजीलैंड ने 8 विकेटों से जो फाइनल T20 था और 5 मैच सीरीज वो पाकिस्तान को हराया एट स्काई स्टेडियम और उन्होंने सीरीज विन की 4-1 से। चेज कर रहे थे 128 रन विद 60 बॉल्स टू स्पेयर, उन्होंने पूरा कर लिया टारगेट और सिर्फ 2 ही विकेटें इन्होंने लूज किए थैंक्स टू द ओपनिंग पार्टनरशिप बिटवीन टिम सीफर्ट एंड फिन एलन जिन्होंने के 93 रन बनाए। कैप्टन माइकल ब्रेसवेल जो था उसका डिसीजन टू पुट पाकिस्तान टू बैट फर्स्ट उसने पे किया। सलमान अली आगा ने हालांकि जो है हाफ सेंचुरी बनाई मगर फिर भी कुछ ना हो सका। नीशैम जो है उसने 5 विकेट ली फॉर 22 रन, अमेजिंग परफॉर्मेंस इन 4 ओवर्स और डफी ने 2 ली और ईश सोडी और सियर्स ने 1-1 विकेट लिया। तो जनाब कोई इनका फिर से ना तो बैट्समैन चला और वही गंदी बॉलिंग चली तो अभी क्या करेंगे। और जनाब एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट द थर्ड राउंड ऑफ एशियन क्वालिफाइंग फॉर 2026 फीफा वर्ल्ड कप जो है वो इट कंटिन्यूज। अब सिर्फ 2 आखिरी गेम्स जो है वो रह गए हैं टू रीच 2026 फाइनल्स इन यूएस कैनेडा एंड मेक्सिको जो कि इसको होस्ट कर रहे हैं और ऑलरेडी जो है वो पहुंच चुके हैं जो है वो क्वालिफाई यानी कर लिया है। जापान जो है वो फर्स्ट नेशन है इनके अलावा जिसने अपना प्लेस बुक किया है विद 2-0 विक्ट्री ओवर बहरेन। इसके साथ साथ ईरान भी पहुंच गया है। यूएई जो है अभी भी इट इज इन द हंट फॉर फर्स्ट वर्ल्ड कप अपीयरेंस सिंस 1990s। सऊदी अरेबिया के 4 पॉइंट्स हैं फ्रॉम 2 पॉइंट्स, वो भी अब जो है क्वालिफाई तकरीबन कर गया है। ईरान जो है वो इम्प्रेसिव 4th सक्सेसिव वर्ल्ड कप एंट्री उसने लिया है आफ्टर 2-2 ड्रॉ हुआ था उज़्बेकिस्तान के साथ और यूएई को उन्होंने हराया था 2-0 से, ड्रॉ किया था 2-2 से कुवैत के लिए। पैलेस्टाइन भी जो है वो बड़ा ड्रीम देख रहा है टू रीच द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप क्योंकि उन्होंने विन किया है 2-1 से अगेंस्ट इराक। ओमान ने बीट किया है कुवैत को इन ग्रुप बी जो सबसे ज्यादा जो है वो हैपनिंग ग्रुप है और कोई भी जो टॉप 4 में है साउथ कोरिया जॉर्डन इराक ओमान वो कोई भी इसमें और आगे आ सकते हैं टू सिक्योर अ प्लेस। और सऊदी अरेबिया जो है उसने बीट किया है अपने जो 2 मैच उसके हुए हैं, एक में मलेशिया को इंडोनेशिया को 5-1 से और चाइना को, बड़ी बात है कि सऊदी टीम जो है उसने चाइना की जबरदस्त टीम थी उसको भी 2-0 से हराया है। तो थी जनाब ये हमारी आज की
खबरें। तो ये थी गर्मा खबरें
खबरें
लेकिन अब ये ताजा नहीं है, ये बासी हो चुकी है क्योंकि सुना
पानी डालेंगे ना इसमें थोड़ा।
अच्छा अभी पानी नहीं, अब मैं कहता हूँ पानी डाल के भी
पानी गुजर गया, सब ऊपर गुजर गया,
अब गुजर गया
सबसे ऊपर चला गया पानी।
आपने जब सुना दी अब पानी गुजर गया
सिर के ऊपर चला।
लेकिन ट्रंप साहब ने जनाब ऑटो सेक्टर का अनाउंस कर दिया है 25% जो यूएस से बाहर है।
और आज ही बेचारे ने कार्नी ने अनाउंस किया ऑटो सेक्टर कि अब हम इसको सही करेंगे।
2 बिलियन डॉलर कार्नी साहब ने कहा अगर मैं इलेक्ट होता हूं तो 2 बिलियन डॉलर जो है वो इंजेक्ट करेंगे ऑटो इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए ड्यूरिंग टैरिफ। और ट्रंप साहब ने 25% टैरिफ आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट ऑफ कार मैन्युफैक्चर पर 25% और डग फोर्ड साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और देखते हैं क्या कहते हैं। ये जंग तो चलती रहेगी, हल्की फुल्की मौसीकी अभी मुझे लगता है 6-8 महीने ऐसे ही चलेगा। लेकिन हार्श कहते हैं ना जिसको क्या हार्श बोलेंगे कि टैरिफ नहीं लगेंगे कनाडा पे, ये अभी वही अब शाजा जी चाहे शर्त लगा लें फिर एक बार मैं मिलियन डॉलर जीत जाऊंगा।
नहीं 6 महीने तो हार्श रहेंगे ना, 6 महीने के बाद अगर सेटल हो गई चीजें फिर वो खत्म हो जाएगी
इलेक्शन, बल्कि मैं तो कहूंगा इलेक्शन के बाद ही
चीजें कुछ ठीक
चीजें जो है।
लेकिन कर्णी साहब भी कहते हैं ना कि अप्रोप्रिएट टाइम पे मैं जाके मिलूंगा।
देखिए
अभी वो अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा है,
बिल्कुल सही कहते हैं वो।
हाँ
वो 6 महीने बाद भी हो सकता है, 6 दिन के बाद भी हो सकता है।
यही तो, पर ये तो कनाडा की जो ऑटो सेक्टर है वो तो मर जाएगी बिल्कुल ही।
नहीं मरेगी इंशाल्लाह, अल्लाह सबके लिए आसानी करने वाला है। हर एक बंदे जो है वो अपने अपने मसाइल में गुजर रहा है, लेकिन ट्रंप साहब को जो है वो अल्लाह अकल दे। लेकिन दूसरी तरफ मैं बहुत सारे उनसे बात होती है अमेरिकन ब्रीड व्हाइट सुप्रीमिस्ट अमेरिकन कुछ ग्रुप्स में, तो उन्होंने कल मुझे एक लिस्ट शेयर की कि कितने बिलियन डॉलर्स जो हैं ट्रंप साहब अमेरिका ले आए, जिसमें वो आपने जो खबर सुनाई यूएई हो गया सऊदीया हो गया
ट्रिलियन डॉलर्स
तो कहते हैं कि जस्ट वेट अमेरिका के अच्छे दिन आ रहे हैं तो चलें सर देख लेते हैं अमेरिका के अच्छे दिन आ रहे हैं। लेकिन एट द एंड जो एंड कंज्यूमर है उसी ने चीजें पे करनी है, उसी के लिए महंगाई हो जाएगी। और ट्रंप साहब भी कह चुके हैं, सारे अमेरिकन इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि रिसेशन आपके दरवाजे पे नॉक करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
खड़ा क्या हुआ है, आ चुका है।
अच्छा आगे
भाईजान आ गए, जैसे रमजान आया है वैसे ही वो भी आ गए हैं। फ्री एंट्री है ना कनाडा में, हर कोई आता फिरता है यहाँ पे, कोई रेफ्यूजी है, कोई
सब कुछ,
हाँ रमजान आ रहा है, फिर रिसेशन आ रहा है, सारे आ रहे हैं, ये बड़ा वेलकमिंग कंट्री है ना,
तो इसलिए वेलकम ना करें फिर बाकी चीजों को, सही है। चलिए जी, देखते हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर कनाडा एंड अमरीका, और आप सबको जो है अल्लाह खुश रखे। ताकरात का सिलसिला जारी है, 27वीं शब है, तो अपने प्यारों के साथ साथ हमें पूरी 770 की टीम को भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखिए।
आमिर को भूलना है तो भूल जाओ, मेनू नहीं भूलना भाई।
चलिए जी, इनको याद रख लें क्योंकि अब ये खुलने वाली है कुछ दिन के बाद।
तुम भूल चुके हो
अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बंद होने की जरूरत नहीं है। चले जी, बहुत शुक्रिया
दशहरे में तुम्हें। फिर जब माजिद भाई के फिर तुम्हें खोलना पड़ा।
नो कमेंट। और माजिद भाई को अल्लाह सेहत दे, जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, और जल्द से जल्द माजिद भाई आपको हम मिस कर रहे हैं, आप जल्दी जल्द ऑफिस आ जाएं, अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया सर, और तमाम सामईन का बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल रहने का, मैनेजमेंट की तरफ से, आरफा मुजफ्फर साहिबा की तरफ से, माजिद जमाल साहब की तरफ से। इजाजत लेंगे हमारे इंजीनियर जिशान अहमद, उनको भी अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं आपका होस्ट आमिर अहमद, इंशाल्लाह जिंदगी रही और सेहत रही, तो कल फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ही लैम्पवाई की फ्री ऐप अपने फोन में डाउनलोड करें, विजिट lampwai.com फॉर टर्म्स एंड कंडीशंस।
770 AM दिया नशरियात सुनन ते हालात हाजरा तो बाखबर रहने दे वास्ते न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल ऐप या साडी वेबसाइट eawaz.com लोकल नंबर 6478724900।